श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय पर आज चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 12 को पढ़ेंगे और फिर इस अध्याय की चर्चा होगी। कृपया दोहराइए। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, य उत्तम श्लोक परायण जनः, जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम्। मुमोच निर्वेद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, य उत्तम श्लोक परायण जनः। जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम्। मुमोच निर्वेद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, य उत्तम श्लोक परायण जनः। जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम्। मुमोच निर्वेद्य कुतः कलेवरम्। आप में से कोई एक दोहराएं। शिवाय कल्याण हेतु लोकस्य समस्त जीवों के भवाय समुन्नति के लिए, भूतये आर्थिक विकास के लिए, ये जो हैं उत्तम श्लोक परायणः भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त जनाः लोग, जीवन्ति जीते हैं, न लेकिन नहीं, आत्म अर्थम स्वार्थ, असौ वह पर आश्रयम् अन्यों के लिए शरण, मुमोच त्याग दिया, निर्विद्य समस्त प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर, कुतः किस लिए कलेवरम मर्त्य शरीर को। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे अन्यों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो अन्यों के लिए आश्रय तुल्य था। ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए भागवत पर चर्चा करने से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को कहें जो श्रीमद् भागवतम के प्रति हैं।
सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिद्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत संगी मत गुरु मन महाधना मन निष्का मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोचत कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेरणा हृत्कंठयोसुरा।
हरे कृष्ण। भागवत सार की श्रृंखला में तीन अध्यायों पर चर्चा हो चुकी है। पहले अध्याय के अंत में प्रश्न पूछे, फिर दूसरे अध्याय में उत्तर दिए, चार उत्तरों को दूसरे अध्याय में दिया, फिर बाकी दो प्रश्नों का उत्तर तीसरे अध्याय में दिया। अब तीसरे अध्याय के अंत में सुत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का वर्णन किया कि श्री कृष्ण कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो दृष्टानिश कलो युग कलियुग में इसके सारे दोषों का नाश करने के लिए ये पुराण एक सूर्य की तरह उदित हुआ है। तो जब ऐसा उन्होंने कहा तो अब चौथे अध्याय में तुरंत शौनक आदि ऋषि या शौनक ऋषि अब प्रश्न करते हैं। छह प्रश्नों का उत्तर मिल गया, बड़े संक्षेप में दे दिया, लेकिन जैसे ही भागवतम का विषय कहा कि भागवत उदय हुआ है, भगवान इसमें वास कर रहे हैं, यही भगवान का रूप है, तब शौनक आदि ऋषियों ने और चार प्रश्न किए। ये चार प्रश्न भागवत के चौथे अध्याय के पहले श्लोक से लेकर तेरहवें श्लोक तक उन्होंने पूछे। तो क्या प्रश्न थे? पहला प्रश्न उन्होंने भागवत का विषय पूछा कि आपने भागवत का कहा, ये कैसे आई, किस स्थान पर कहा गया, इसको किसने लिखा है, इसको कौन रचयिता है, किस उद्देश्य से लिखा गया है, तो इस प्रश्न को उन्होंने किया भागवत का। अभी तक भागवत सुनी नहीं थी, भागवत के विषय में सुना था कि हाँ वहाँ पर कहा गया, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तो ये कहाँ पर हुई, किसने लिखा, क्या इतिहास है इसका, क्या उद्देश्य है इसका, तो ये प्रश्न किए। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि भागवतम तो ठीक है, ये जो सुखदेव गोस्वामी थे इनके तो बहुत महान गुण हमने सुने हैं, तो इनको हस्तिनापुर में जब वो आए तो कैसे लोगों ने उनको पहचाना, क्या उनके गुण हैं इत्यादि, तो सुखदेव गोस्वामी का वर्णन। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया परीक्षित महाराज के विषय में कि परीक्षित महाराज इनका कैसे जन्म हुआ, क्या कार्य किए इन्होंने, तो इन्होंने वर्णन, तीसरा ये प्रश्न उन्होंने पूछा। और चौथा प्रश्न जो आज के इस श्लोक में है, वो प्रश्न करते हैं कि परीक्षित महाराज ने अपना देह क्यों त्यागा, क्या कारण था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वर्णन वो करते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, ये उत्तम श्लोक जनाः, उत्तम श्लोक परायणः जनाः, जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो जीवंती दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते हैं, और उनका शरीर, उनका जीवन आश्रय होता है दूसरे लोगों के लिए, फिर उन्होंने अपना शरीर क्यों त्यागा परीक्षित महाराज ने। तो ये चार प्रश्न पहले से 13वें श्लोक में करते हैं, ये भी छोटा अध्याय है, केवल 33 श्लोक हैं इसमें, तो इसमें वो वर्णन पहले से ही इसमें होता है। तो क्या पूछा, पहला प्रश्न था भागवत कैसे आई, भागवत किसने कहा, ये जो आपने भागवत का वर्णन किया ये कहाँ कही गई, इतिहास क्या है इसका। और दूसरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण वो था सुखदेव गोस्वामी के विषय में। ऋषि मुनि पूछने लगे कि हमने तो सुना है योगी, ये बहुत महायोगी है, और इतने बड़े योगी जो हमेशा विरक्त रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, जन्म लेते ही वन में चले गए, अब ऐसे व्यक्ति को भागवत कहने की क्यों इच्छा हो गई। प्रश्न बहुत अच्छा था कि देखिए दोनों वक्ता और श्रोता, श्रोता कौन है, परीक्षित महाराज, क्या है वो, राजा। अब राजा को समय होता है, राजा तो बड़े व्यस्त होते हैं, सारे व्यवस्था करना, राज्य की देखना, देखभाल करना, प्रजा की देखभाल करना, राजा का प्रमुख कर्तव्य धर्म का प्रचार करना, अब इतना होते हुए भी, इतने व्यस्त होते हुए भी ऐसा कैसे हुआ कि वो बैठकर आराम से 7 दिन तक भागवत सुन रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई घर की चिंता नहीं, राज्य की चिंता नहीं, परिवार की चिंता नहीं, ये कैसे हुआ। और दूसरी ओर हैं वक्ता जो पूर्ण विरक्त हैं, जंगल में अकेले रहने वाले, किसी से बात नहीं करते थे, मौनी एक उनका लक्षण है, किसी से बात नहीं करते थे, जन्म लेते ही भाग गए वन में, हा पुत्र कहते हुए व्यासदेव पीछे भाग रहे। तो ऐसे विरक्त व्यक्ति ने हस्तिनापुर में आकर क्यों भागवतम कही, क्या कारण था, उनको तो विरक्त जंगल में रहना था। तो सुखदेव गोस्वामी के बहुत सुंदर गुणों का वर्णन शौनक आदि ऋषि करते हैं, वो कहते हैं तस्य पुत्र महायोगी समदृक् निर्विकल्पः एकांत मतेरुनिन्द्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयत। तस्य पुत्र, उनका जो पुत्र थे व्यासदेव, महायोगी, बहुत बड़े योगी थे, और एकांत मति निर्विकल्पः, बहुत भगवान में, ब्रह्म में उनका ध्यान था। वैसे सुखदेव गोस्वामी शुरुआत में ब्रह्मवादी थे, भागवत के श्लोकों को सुनकर वापस आ गए, जंगल में चले गए थे, व्यासदेव ने सोचा भी नहीं कैसे लाना चाहिए, ये तो वापस ही नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा जाओ लकड़ी चुनो वन में, और लकड़ी चुनते चुनते भागवत के श्लोक कहना, क्योंकि व्यासदेव चाहते थे भागवत को अपने पुत्र को पढ़ाना, क्योंकि वो जानते थे कौन है, यही एक योग्य व्यक्ति है जो भागवत कह सकता है, तो उन्होंने श्लोक के लिए कह दिया। तो अब ये लोग गए और वहां जाकर वो श्लोक कहने लगे, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघाम सया पाए यदप्य साधवी लेभे गतिं धात्रि उचितं ततोन्यो कम वा दयालु शरणं वजेम। ऐसा कौन व्यक्ति है इतना दयालु जिसकी शरण जाना चाहिए। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, वो पूतना जो अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी मारने के लिए कृष्ण को, हत्या करने के लिए, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसको लेभे गतिं धात्री उचितं ततोन्य, अपने परम धाम में धात्री का उसको स्थान दिया, माता का स्थान दिया, क्योंकि उसने इच्छा की थी स्तनपान कराने की, भले विष लगाया था। तो इतना दयालु कौन हो सकता। तो जब ऐसे श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने सुने, तुरंत सब कुछ भूल गए, भागकर वापस आए, पूछा ये श्लोक कौन, और सुनाओ और सुनाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, और तो सुनना है, तो अब व्यासदेव के पास आइए। तो तुरंत भागकर आए, मैं और सुनना चाहता हूँ। और फिर व्यासदेव ने पूरी भागवत उनको कही। तो ऐसा कैसे हुआ, ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं। तस्य पुत्र महायोगी, विरक्त आदमी थे, और विरक्त ही नहीं इतने आत्म साक्षात्कारी थे कि आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं कि एक समय जब व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे भाग भाग कर जा रहे थे, हा पुत्र हा पुत्र, वो आगे चल रहे थे, तो वो एक स्थान से निकले जहां नदी में स्त्रियां स्नान कर रही थी, नग्न थी, और वो स्नान कर रही थी। तो जैसे ही, और सुखदेव गोस्वामी भी गए, वो भी पूर्ण नग्न थे, उन्होंने तो कोई अभी जन्म हुआ था, जन्म लेकर भाग गए, तो वो ऐसे ही जा रहे थे, तो वो नग्न थे, स्त्रियां पूर्ण नग्न थी, स्नान कर रही थी। और जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को देखा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ना उन्होंने अपने शरीर को ढका, ना कुछ किया, जैसे थे वैसे रहे। और पीछे पीछे व्यासदेव आए। अब व्यासदेव ने तो सब कपड़े पहने हुए हैं, सब ठीक से हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, और ये तो अभी अभी जन्म लिया हुआ 15-16 वर्ष के बालक के समान थे वो। सुखदेव गोस्वामी का जन्म ऐसे ही हुआ था, छोटे बालक के समान नहीं। तो 15-16 वर्ष का युवक नग्न उनके सामने से जाता है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। एक वृद्ध आता है जिसने आराम से सब कपड़े पहने हुए हैं, बहुत वृद्ध है, और वो जब आता है तो जैसे ही स्त्रियों ने देखा तुरंत अपने कपड़े वपड़े लिए, अपने शरीर को ढक लिया। तो शौनक आदि ऋषि पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। तो वो कहते हैं शौनक आदि ऋषि, उसको बताते हैं कि इतने महान थे सुखदेव गोस्वामी कि जब सुखदेव गोस्वामी गए कोई प्रतिक्रिया नहीं, तो व्यासदेव ने प्रश्न कर लिया उन स्त्रियों से। व्यासदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे पुत्र जा रहा है आगे खड़े हैं आराम से नग्न, लेकिन जब मैं जा रहा हूं तो सब अपने शरीर को ढक रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न कर लिया व्यासदेव ने कि स्त्रियों से ऐसा क्यों किया आपने, जब मेरा पुत्र गया तब नहीं ढका। तो उन स्त्रियों ने कहा कि आपका पुत्र सबको समान दृष्टि से देखता है, वो शरीर देखता ही नहीं, वो तो आत्मा को देखता है, उस स्तर का है वो, को भेदभाव नहीं करता कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इस देश का है, ये इस जाति का है, वो तो हरेक में केवल भगवान के अंश को देखता है, हरेक में आत्मा को देखता है, वो तो जानता ही नहीं स्त्री पुरुष क्या है। इसलिए उसके सामने अगर हम नग्न खड़े भी हैं तो उसको कोई फर्क नहीं, उसकी दृष्टि ऐसी थी, उसने कोई भेद नहीं किया, लेकिन आप भेद करते हैं, आप स्त्री पुरुष में भेद करते हैं, तो इसीलिए आपके सामने हमने तुरंत ढक लिए। आचार्य एक जगह पर यह भी समझाते हैं क्योंकि गृहस्थ के रूप में भेद करना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत तो हम सीखते हैं कि गुरु कौन हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार नहीं है अगर वो भेद करता है, वो सोचता है कि नहीं मैं केवल इसी वर्ग के लोगों को ज्ञान दूंगा, दूसरे वर्ग के लोगों को नहीं, इसी धर्म को ज्ञान दूंगा, दूसरे धर्म के लोगों को नहीं, मैं केवल स्त्रियों को ज्ञान दूंगा पुरुष को नहीं, या पुरुषों को ज्ञान दूंगा स्त्रियों को नहीं। भेद जो करता है ज्ञान देने में, वो गुरु नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने कोई भेद नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने कोई भेद नहीं किया, पात्र अपात्र ना देखी, चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं देखा कि ये पात्र है कि नहीं, इसको योग्यता है कि नहीं, सबको भगवान का प्रेम प्रदान किया। जिसने चैतन्य महाप्रभु को देखा उसको कृष्ण प्रेम हो गया, जिसने चैतन्य महाप्रभु के मुख से भगवान का नाम सुन लिया कृष्ण प्रेम हो गया, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन दे दिया कृष्ण प्रेम आ गया। चैतन्य महाप्रभु उतना तो छोड़िए, जब चैतन्य महाप्रभु किसी को दर्शन दे देते थे, किसी को आलिंगन दे देते थे, वो व्यक्ति हरि 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 कहता हुआ जब अपने गांव जाता था, लोग उसका स्पर्श कर लेते थे, उनको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। ये चैतन्य महाप्रभु की शक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु तो छोड़िए, कोई व्यक्ति उनके दर्शन करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करके अपने गांव चला गया वापस, पूरा गांव को कृष्ण प्रेम मिल गया। ये चैतन्य महाप्रभु ने किया। कोई भेद नहीं, कोई पात्र नहीं देखा, कोई जाति नहीं देखी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सन्यासी ब्रह्मचारी कुछ नहीं देखा, हरेक को कृष्ण प्रेम। और यही श्रील प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने ये नहीं देखा ये पाश्चात्य जगत के हैं, ये मांस खाने वाला है, ये मदिरा पीने वाला है, इसके पास नहीं जाऊंगा। नहीं, किसी देश का होने दीजिए, किसी स्थान का हो, श्रील प्रभुपाद ने सबको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया। तो ये गुरु है। तो यहां पर यही वर्णन किया गया कि सुखदेव गोस्वामी समान देखते थे, इसीलिए स्त्रियों ने कोई भेदभाव नहीं किया, स्त्रियां वैसे ही खड़ी रहीं। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी के बहुत सुंदर गुणों का शौनक आदि ऋषि वर्णन करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो सुखदेव गोस्वामी जो किसी के घर पर थोड़े समय से ज्यादा रुकते नहीं थे, जब तक गाय को दोहन गोदोहन, यह वसुंधरा श्लोक है, स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिना, उतना ही समय रुकते थे जितने समय में गाय को दोहा जाता था। हाँ, ये वो समय था कि सबके घर पे गाय हुआ करती थी। आज आप लोगों को विचित्र लगेगा कि अरे अगर सुखदेव गोस्वामी हमारे घर पर आ गए तो कितनी देर रुकेंगे, गाय नहीं है। तो उस समय सबके घर पे गाय हुआ करती थी, तो जितना समय गाय को दोहने लगता था बस उतने समय वो रुकते थे, ज्यादा समय नहीं। अलग अलग लोग अलग अलग टीका करते हैं। कोई कहते हैं कि जब गायों को दोहाया जाता था तो सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की लीला का स्मरण होता था, इसलिए रुक जाते थे गाय दोहने तक। कोई कहते हैं कि इसलिए रुकते थे कि चलो दूध पीकर चलते हैं, अब आ ही गए हैं तो दूध भी पी लेते हैं, इसीलिए भी रुक जाते थे। तो खैर कोई भी कारण हो, लेकिन इतना समय, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं आधा घंटा, गाय धोने में 15-20 मिनट आधा घंटा लगता है, बस उतना समय रुकते थे। और किसी के यहाँ रुकते नहीं थे, वो इतने विरक्त थे, ऐसा नहीं था कि बस चले गए वहाँ अच्छा भोजन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, बड़ा व्यक्ति है तो रुक गए, नहीं, बस उतना ही समय। तो वो जो केवल गोद होने तक रुकते थे, कहीं रुकते नहीं थे, 7 दिन तक एक ही जगह बैठकर कैसे कथा कर सके? ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने 7 दिन तक एक ही जगह बैठकर कथा की? जो व्यक्ति 15-20 मिनट से ज्यादा आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुकते हैं तो वो कैसे हुए? और फिर उन्होंने प्रश्न किया परीक्षित महाराज के विषय में कि परीक्षित महाराज अभिमन्यु सुतम, ये जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, तो ये तो भक्त हैं, इतने बड़े राजा थे, कितना उनको कार्य होगा, तो उन्होंने कैसे सब कुछ त्याग कर भागवत सुनी? क्या कारण था? अभिमन्यु सुतम सुत प्राहुर भागवतोत्तमम, भागवतोत्तमम, बहुत बड़े भक्त हैं, और इतने बड़े भक्त होते हुए भी उनका तो जन्म ही बहुत आश्चर्य की बात है, उनका जन्म और कार्य। तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृणीहितन, तस्य जन्म महाश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य है उनका जन्म ही। सब जानते हैं कैसे श्री कृष्ण ने स्वयं उनकी रक्षा की थी उत्तरा के गर्भ में। तो इतने बड़े व्यक्ति, ससम्राट कस्य वा हेतु, बहुत बड़े सम्राट थे, राज्य करते थे, तो ऐसे व्यक्ति इतने बड़े राजा होते हुए भी जो उनके सामने उनके सारे शत्रु झुक जाया करते थे, कैसे उन्होंने अपने शरीर को त्यागा? और फिर जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा वो कहते हैं शिवाय लोकस्य भवाय भूतये। जो महात्मा होते हैं या उत्तम श्लोक परायण जनहा, उत्तम श्लोक मतलब जो कृष्ण के भक्त होते हैं, वे लोग दूसरों को आश्रय प्रदान करते हैं, अपने लिए नहीं जीते, उनका जीवन समाप्त हो चुका होता है। एक दृष्टि से जो कृष्ण के भक्त हैं पूर्ण समर्पित, उनका जीवन समाप्त हो गया भौतिक जीवन, क्योंकि उनको अपने लिए कोई इच्छा ही नहीं है, वो अपने लिए कोई कार्य नहीं करते, तो फिर उनका जीवन क्या है? दूसरों के लिए है, वो केवल दूसरों के लिए अगर जी रहे हैं। जीना उनके लिए कष्टदायक है, भौतिक जगत में बने रहना कष्टदायक है, शरीर को चलाना, शरीर को कष्टों को झेलना कष्टदायक है, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए बने रहते हैं और दूसरों को आश्रय देते हैं। आश्रय अर्थात भगवान के निकट लाते हैं, ये उनका कार्य है। तो इसलिए वो कहती है उत्तम श्लोक परायण जीवंती नात्म अर्थमसौ पराश्रयम्, अपने लिए नहीं जीते हैं, पराश्रय दूसरों को आश्रय देने के लिए जीते हैं। तो फिर क्या आवश्यकता थी अपने देह को त्यागने की? ऐसा व्यक्ति जो खुद के लिए जीता ही नहीं है, उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपना देह क्यों त्याग दिया? क्यों नहीं जीवन बनाए रखा ताकि हजारों लाखों लोगों को और आश्रय वो दे सकें? तो ये प्रश्न था उनका। तो उसके बाद जब ये प्रश्न हो गए तो तब सुत गोस्वामी ने बोलना प्रारंभ किया, और सुत गोस्वामी ने इतिहास कहा कैसे श्रीमद् भागवत आया। तो उन्होंने वर्णन किया कि कैसे व्यासदेव ने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, महाभारत की रचना की, सब रचना की जीवों के उद्धार के लिए। एक वेद था, उसको चार भागों में विभाजित कर दिया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सारे में विभाजित करके अलग अलग ऋषियों को उसको पढ़ा दिया। ऋग्वेद उन्होंने पढ़ाया पैल ऋषि को, सामवेद पढ़ाया जैमिनी ऋषि को, अथर्ववेद उन्होंने पढ़ाया अंगिरा ऋषि को, और यजुर्वेद वैशंपायन ऋषि को। तो अलग अलग ऋषियों को उन्होंने ये वेद पढ़ा दिए कि अब आप आगे जाकर वेद की वेदों को आगे बढ़ाओ या लोगों को सिखाओ। और पुराण जो थे वो उन्होंने रोमहर्षण सूत, ये सूत गोस्वामी जो हैं ये रोमहर्षण के पुत्र हैं, तो ये कहते हैं कि मेरे पिता सूत को उन्होंने पुराण पढ़ा दिए, तो सारे पुराणों का अधिकार उसको दे दिया। तो रोमहर्षण पुराणों पर किया करते थे और अन्य वेदों पर अन्य ऋषि प्रवचन किया करते थे, फैलाते थे उसको, प्रचार करते थे। तो ऐसे व्यासदेव ने ये रचना की, तो शास्त्र बना दिए, फिर उन्होंने महाभारत भी बनाया, जो द्विज बंधु नाम, स्त्री नाम, द्विज बंधु नाम, ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा ज्ञान में बड़े चढ़े नहीं है। द्विज बंधु मतलब जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं लेकिन कार्य ब्राह्मण की तरह नहीं करते, तो ऐसे लोगों को उन्होंने ये पढ़ा दिया। और उसके बाद जब ये सारा हो गया तो व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। तो इस अध्याय के 14वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक वो केवल ये वर्णन करते हैं कि कैसे व्यासदेव ने अलग अलग शास्त्रों को बनाया। दरअसल व्यासदेव ने ये शास्त्र हम सबको दिए क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि बहुत कम है। हम सुन चुके हैं पहले श्लोकों में, अल्पायुष हैं इस युग में, कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रतः, बहुत बुद्धि कम है हमारी, तो हमें याद नहीं रहेगा। पहले समय में लोग शास्त्र सुनते थे, उसको याद कर लेते थे, उनको श्रुतिधर कहते हैं। श्रुतिधर मतलब जो भी कहा उसको याद कर लेना, सुना याद कर लिया बस, कोई आवश्यकता नहीं नोट्स बनाने की, कोई आवश्यकता नहीं पढ़ने की लिखित रूप में। लेकिन कलयुग में लिखित की आवश्यकता थी, इसलिए व्यासदेव जिनका जन्म विशेष युग में, जिस युग में युग बदल जाते हैं, जिस चतुर्युग में, उसमें हुआ, द्वापर में, उनका द्वापर की तीसरी संध्या में उनका जन्म हुआ। तो प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में साधारणतः युगों का नियम होता है सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलि। ये हर चतुर्युग में यही नियम है। सत, द्वा, द्वा यानी दूसरा, त्र, त्रेता तीसरा और कलियुग। लेकिन जब वैवस्वत मनु का 28वां चतुर्युग होता है, जिसमें हम लोग अभी हैं, उसमें वो विशेष चतुर्युग होता है जिसमें श्री कृष्ण आते हैं, इसीलिए उसकी जो क्रम है वो बदल जाता है। तो पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता आ जाता है, फिर द्वापर आता है और फिर कलि आता है। तो ये विशेष युग है। तो इस युग में जहाँ ऐसी विशेषता हुई, सत्यवती और पराशर मुनि के संसर्ग से इनका जन्म हुआ व्यासदेव। तो ये भी कथा आप सब जानते हैं कैसे व्यासदेव का जन्म हुआ। सत्यवती एक मछुआरे को मिली थी, वैसे तो वो मछुआरे की पुत्री नहीं थी, उनको मिली थी, तो वहीं रहती थी। नदी को पार कराना उनका कार्य था सत्यवती का, और ऐसे कहते हैं कि उनके शरीर से बहुत दुर्गंध आती थी मछली की, मछलियों के आस रहते थे, उनके पिता मछुआरे थे, तो उनके शरीर से भी बहुत दुर्गंध आती थी, इसलिए उनका नाम था मत्स्यगंधा। आजकल यहाँ पर लोगों ने ट्रेन चला रखी है ना, मत्स्यगंधा पड़ा। मत्स्यगंधा मतलब जिसमें से मछली की बदबू आती हो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, मत्स्यगंधा मत्स्यगंधा, हमको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, मत्स्यगंधा मतलब मछली की बदबू आने वाली। तो उनके शरीर से मछली की बदबू आती थी, इसलिए उनका नाम था मत्स्यगंधा। तो एक समय व्यासदेव के पिता पराशर मुनि वो वहाँ पर आए और उन्होंने उससे कहा कि नदी पार कराओ। तो जब नदी पार करा रही थी, तो उस समय पराशर मुनि ने उसके पास प्रस्ताव रखा कि आगे चलकर अब तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो आगे बहुत महान कार्य करेगा, तो इसीलिए अभी यहाँ इस समय में उन्होंने कहा मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करना चाहता हूँ। लेकिन वो घबरा गई, उन्होंने कहा अभी तो विवाह नहीं हुआ और ऐसे समय में यहाँ कैसे होगा, ये हम लोग नदी में जा रहे हैं। तो उस समय एक द्वीप में पराशर मुनि ने ऐसा वातावरण बना दिया जहाँ कोई देख नहीं सके, और उस समय उन्होंने उनको पुत्र प्रदान किया सत्यवती को, और ये भी कहा कि आपका सतीत्व बना रहेगा, चिंता नहीं करना, आपका कौमार्य बना रहेगा, लेकिन पुत्र उत्पन्न होगा। तो फिर उनसे पुत्र उत्पन्न हुए व्यासदेव, जो उत्पन्न होते ही कोई छोटे बच्चे की तरह उत्पन्न नहीं हुए, वो तो सीधे ऋषि के रूप में उत्पन्न हुए और वन में चले गए तपस्या करने। जाते समय उन्होंने अपनी माता से कहा, वरदान दिया, देखिए ये भगवान के अवतार हैं, जन्म लेते ही माता को अवतार दे वरदान दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी आप मुझे स्मरण करेंगे, जब आवश्यकता हो बस मेरा स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। और वो चले गए तपस्या करने के लिए, घोर तपस्या। तो ऐसे क्योंकि इनका द्वीप में जन्म हुआ, उनका वर्ण श्याम था, इसीलिए कृष्ण द्वैपायन, द्वीप में जिनका जन्म हुआ उनको कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। तो ऐसे उनका जन्म की कथा भी है। और फिर व्यासदेव ने अलग अलग शास्त्रों की रचना की। कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, व्यास पदवी है, अलग अलग समय में व्यास आते हैं और अलग अलग व्यक्ति, कभी कोई जीव हो सकता है, कभी कोई जीव ना मिलने पर भगवान स्वयं व्यास बन जाते हैं। तो ऐसे व्यासदेव ने फिर रचना कर दी, वेदों को बांटा, इसलिए कि इस कलयुग में हो नहीं सकेगा हम सबके लिए, जो लिखित रूप में होगा तो हम पढ़कर उसका ज्ञान ले सकेंगे। तो कलयुग के जीवों पर उद्धार करने के लिए व्यासदेव ने इसको किया। तो जब अब व्यासदेव सारे शास्त्र लिख चुके, वेद लिख चुके, सब कुछ हो गया, ज्ञान दे दिया किसकी पूजा कैसे करनी है, देवताओं के लिए कैसा यज्ञ करना है, कर्मकांड को दे दिया, महाभारत को दे दिया, जिसमें भगवद गीता को भी दे दिया, ज्ञान दे दिया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थे। व्यासदेव सोचने लगे कि मैंने इतना सब किया और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलत कार्य कर दिया। जीवों को कैसे वो इस जगत में रह सकते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, ये मैंने सब दे दिया, सारे शास्त्र दे दिए, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में अभी भी जलन है, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी अधूरा कार्य किया है, कार्य पूरा नहीं हुआ मेरा, तो क्या बात है। वो विचार करने लगे, चिंतन करने लगे कि क्या मैंने ऐसा किया जिसके द्वारा मुझे संतुष्टि अभी नहीं मिली है। तो ये 26 श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक, 6 श्लोकों में, 5 श्लोकों में व्यासदेव अपने मन में सोच रहे हैं, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्यों प्रसन्न नहीं हूँ, सारे शास्त्र लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान है लेकिन ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, ज्ञान हमें संतुष्टि नहीं दे सकता। तो व्यासदेव विचार करने लगे कि क्या हुआ, और फिर कई चीजें सोचकर उन्होंने सोचा कि हाँ शायद ऐसा हुआ है कि मैंने केवल भगवान का गुणगान करने वाला कोई शास्त्र बनाया नहीं, मैंने अलग अलग शास्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का गुणगान किया है। जैसे उपनिषदों में उन्होंने कह दिया तन्ने जति तद्दय जति तद्दूरे तद अंतिके, भगवान कौन है, ना वो चल नहीं सकते लेकिन सबसे तेज भागते हैं, तन्ने जति तद्दय जति तद्दूरे तद अंतिके, वो बहुत दूर हैं लेकिन सबके निकट भी हैं। तो ऐसा वर्णन करके किसको समझ में आएगा भगवान कौन है, है ना। अगर आपको समझाया जाए भगवान कौन है, भगवान इस कमरे के अंदर हैं और कमरा भगवान के अंदर है, भगवान यही कहते हैं भगवद गीता में, सब जीव मेरे अंदर हैं, मैं सबके अंदर हूँ लेकिन मैं सबके बाहर भी हूँ, मैं किसी के अंदर नहीं। क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा क्या कहा भगवान ने। तो ऐसे ही वर्णन किया गया उपनिषदों में, और इसीलिए जो नास्तिक लोग होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, वो इनको पढ़ के कह देते देखो अब कैसे हो सकते भगवान कृष्ण, अरे जो व्यक्ति का रूप है वो कमरे में अंदर भी है, कमरे के बाहर भी है, और कमरा उसके अंदर है। अगर ऐसा कहा जाए किसी को और फिर कहें कि उसका बड़ा सुंदर रूप है, कोई मानेगा, कौन मानेगा। व्यासदेव ने यही किया, ऐसे घुमा फिरा के बता दिया भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, सीधे भगवान का गुणगान कृष्ण स्तु भगवान स्वयं वर्णन नहीं किया। कई कई जगहों पर जैसे उन्होंने सूचनाएं दी, कई जगहों पर तो भगवान के रूप का ही वर्णन नहीं है कि भगवान का रूप भी होता है। इसीलिए आजकल सब नास्तिक लोग, मायावादी लोग उन श्लोकों को लेके, देखो आपके शास्त्र में कहा गया है भगवान का रूप नहीं होता। तो व्यासदेव ने ऐसा कर दिया, संतुष्टि नहीं मिली। तो फिर व्यासदेव ने विचार किया, हाँ मैंने भगवान का सीधे गुणगान नहीं किया, उनकी लीलाओं का गुणगान नहीं किया। और तब उनको ये विचार आया कि हाँ ये मेरी गलती है। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, सब उसको मिल जाता है, लेकिन अगर वो भगवान की लीलाओं में, कथा में रुचि नहीं लेता, नो उत्पाद्य यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, कोई लाभ नहीं है, हृदय में संतुष्टि नहीं आएगी। इसीलिए हमें विश्वक्सेन कथा सुय, भगवान की कथाओं में अगर रुचि उत्पन्न नहीं हुई, सारे शास्त्रों का ज्ञान का जो भी दिया गया वेदों में उद्देश्य यही है, कथा रुचि, वासुदेव कथा रुचि, बस अगर ये नहीं है, श्रम एव हि केवलम, जीवन व्यर्थ है, हमने जो भी किया केवल जीवन को बर्बाद करने के लिए किया। तो इसलिए सारा उद्देश्य है कृष्ण का स्पष्ट ज्ञान। वेद पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्तौ च मध्ये च हरि ही सर्वत्र गीयते। सारे शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है, आदो शुरुआत में, अंतो अंत में, मध्य मध्य च, क्या है? हरि ही सर्वत्र गीयते, केवल श्री हरि का गुणगान, कृष्ण का गुणगान। तो अगर हम शास्त्र पढ़ें कृष्ण को अलग कर दें, वेद उपनिषदों पर चर्चा करें कृष्ण को अलग कर दें, श्रम एव ही केवलम, जीवन की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। और व्यास देव जिन्होंने सारे शास्त्र लिख दिए, हमें तो उतने शास्त्र पता भी नहीं है, हमें तो नाम भी नहीं पता सारी संहिताओं के, सारे उपनिषदों के, सारे वेदों के, सारे पुराणों के, लेकिन व्यासदेव जिन्होंने लिख दिया उन सबको, फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो जब व्यासदेव संतुष्ट नहीं हो सकते तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? इसीलिए इस विभाग का सार ये है कि हमें ज्ञान वो लेना चाहिए जो कृष्ण की भक्ति में मदद करे, हमें कृष्ण की भक्ति में बढ़ाए। सच्चा ज्ञान, जीव को संतुष्ट करने वाला ज्ञान, सच्चा आत्म साक्षात्कार केवल इतना ही है कि हम श्री कृष्ण को जानें, हम कृष्ण की कथाओं में रुचि बढ़ाएं। श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ से पहले ये जाने कि श्री कृष्ण कौन हैं। भागवत पढ़ने का क्रम क्या है? सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवत कहनी शुरू की, सीधे नहीं कह दिया दसवां स्कंद, सीधे कृष्ण का जन्म, कृष्ण की लीलाएं कह सकते थे, ऐसा तो नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी कुछ पढ़ रहे थे बार बार आएगा, तो बहुत स्पष्ट था उनको। लेकिन उन्होंने क्रम इसलिए बनाया ताकि पहले हम जान लें कि कृष्ण कौन है, पहले अध्याय, दूसरा स्कंद, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, इन 9 स्कंदों में कृष्ण की महानता को समझ लें। कृष्ण कौन है? सारे ब्रह्मांड उनसे आते हैं, जितने जीव हैं उनकी शक्ति हैं, जितनी गोपियां हैं उनकी शक्ति हैं, श्रीमती राधा रानी उनकी शक्ति हैं, श्रीमती राधा रानी का उद्देश्य केवल आनंद देना है। और तब जब हम 10वें स्कंद में रासलीला पढ़ते हैं कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर पहले पढ़ लेते हैं, जैसे आजकल लोग यही करते हैं, भागवत कथा मतलब रासलीला, तो जब पहले पढ़ लेते हैं तो हृदय में काम वासना बढ़ जाती है, फिर लोगों के मन में आता है कृष्ण ने इतनी सारी गोपियों के साथ रासलीला की, हम 2-4 के साथ कर सकते हैं, कृष्ण भगवान है, हमें उनका अनुगमन करना है, पद चिन्हों पर चलना है, तो कृष्ण ने ऐसा किया। प्रभुपाद से जब कोई ऐसा कहता था कि कृष्ण ने रासलीला की, तो अब अगर लोग अलग अलग स्त्रियों के साथ संग कर रहे हैं क्या गलत है? तो प्रभुपाद कहते थे कृष्ण ने तो गोवर्धन भी उठाया, पहले आप गोवर्धन उठाओ फिर रासलीला करना। तो गोवर्धन उठा सकते हैं क्या? नहीं। तो जब गोवर्धन नहीं उठा सकते तो तुलना उस व्यक्ति के साथ करनी चाहिए जो समान हो। एक चीज लेकर हमें तुलना नहीं कर लेनी चाहिए कि हाँ उन्होंने ऐसा किया हम भी कर सकते हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ किया, कुछ दिन के बालक थे, पूतना का वध किया, शक्टासुर को मारा, तुम भी करो। पूतना कितनी बड़ी थी जब शरीर गिरा? 21 मील लंबा, यहाँ से अंकोला पहुँच जाएगा, मारो उसको। गोवर्धन उठाओ। तो इसीलिए भगवान से जीव की तुलना नहीं हो सकती, भगवान की लीलाएं हैं, जीव का समय व्यर्थ है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वट एवर कृष्णा परफॉर्म्स इज, क्या कहते हैं उनको लीलाओं को, पास टाइम, वी से दैट, एंड वट एवर वी परफॉर्म इट इज जस्ट टाइम पास, राइट, समय की बर्बादी है। तो इसीलिए तुलना भगवान और जीव में नहीं, जीव में हो सकती है, जीव और जीव में। तो इसीलिए पहले 9 स्कंदों को पढ़कर जब हम 10वें स्कंद पे जाते हैं तब कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार व्यासदेव ने जब इनको मनन करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि हाँ मुझसे ये एक गलती हुई है कि मैंने श्री कृष्ण की लीलाओं को, श्री कृष्ण के विषय को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं किया किसी ग्रंथ में। तो फिर उन्होंने, हाँ महाभारत में वर्णन है कृष्ण की लीलाओं का, लेकिन कृष्ण का पूर्ण वर्णन, वहाँ जो हीरो हैं वो पांडव हैं, नायक पांडव हैं, कृष्ण का वर्णन है लेकिन सीधे रूप में नहीं है, पूरा सीधा कृष्ण का वर्णन नहीं है कि वही भगवान हैं, उन कैसे वो भगवान हैं, कैसे वो सृष्टि की रचना कर, थोड़ा बहुत है भीष्म आदि लोगों ने, भक्तों ने कहा है, लेकिन पूर्ण ग्रंथ उनके ऊपर नहीं। तो इसीलिए संतुष्टि नहीं थी। तो ऐसे सोचते हुए जब वो अपने आश्रम में आए तो उन्होंने उस समय वहाँ पर नारद मुनि का आगमन हुआ। इस अध्याय का शीर्षक है नारद मुनि का आगमन। तो नारद मुनि का आगमन हुआ, वहाँ पर नारद मुनि चले आए। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, नारद मुनि उस समय कैसे आ गए। तो ये दिखलाता है कि जब जीव जिज्ञासा करता है, जब हमारे मन में भगवान को जानने की जिज्ञासा तीव्र होती है, हम अपने मन में चिंतन करते हैं कि क्या मैं सही में प्रसन्न हूँ, जैसे व्यासदेव चिंतन कर रहे थे। तो जब हम चिंतन करते हैं कि क्या मैं सही में प्रसन्न हूँ, क्या मैंने जो कार्य जीवन में किए हैं, कोई भी कार्य क्यों ना किया, धन कमाया, परिवार चलाया, समाज की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, जो भी किया हो, क्या मैं उस कार्य से सही में प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, क्या मुझे हृदय में ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन की पूर्णता हो गई है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, यही जीवन में मुझे करना था, क्या मेरे मन में ऐसा है, मैं जान गया हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मुझे शरीर लेना पड़ता है, क्यों कष्ट है। अगर नहीं तो फिर हमें तीव्रता से चिंतन मनन करना चाहिए, इच्छा करनी चाहिए कि मेरी इस जिज्ञासा को, मेरी इस असंतुष्टि को मैं कैसे पूर्ण कर सकता हूँ, क्या हो सकता है, मैंने क्या कमी रही मेरे जीवन में। मैंने बहुत अच्छा शिक्षण प्राप्त कर लिया, बड़ा अच्छा अपने माता पिता की सेवा कर ली, मैंने बहुत अच्छा विवाह कर लिया, संतानों को बहुत अच्छी तरह से पाला, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको धन दिया, सब कुछ किया, कोई कमी नहीं रखी, बहुत अच्छा समाज में भी मेरा नाम है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्या कमी है, क्या रह गया मेरे जीवन में। और फिर जब जीव कहता है, सोचता है कि हाँ भगवान की कमी रह गई, मैंने भगवान को जानने का प्रयास नहीं किया, जीवन भर बाकी अन्य कार्य किए, पोथी पढ़ी। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर भजन में कहते हैं कि जीवन बर्बाद किया मैंने, बहुत सारा धन कमाया, इधर उधर देश विदेश में घूमा धन कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, ये मान लिया कि यही एक जीवन है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। स्वजन पालन कोरी एक मने, बस स्वजनों का पालन यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, भूलिया तुम्हारे हरी, भूल गया तुमको मैं। तो व्यक्ति जब जिज्ञासा करता है, चिंतन मनन करता है, हृदय में भगवान जो परमात्मा के रूप में हृदय में है, वही फिर जो चेत गुरु हैं, चेत अर्थात चित्त में जो गुरु हैं, वही फिर हमारे सामने एक शुद्ध भक्त, एक गुरु के रूप में प्रकट होते हैं ज्ञान देने के लिए। जैसे जब व्यासदेव का ये चिंतन बढ़ गया कि क्यों मुझे संतुष्टि नहीं है, क्यों आनंद नहीं आ रहा, तो फिर नारद मुनि वहाँ आए ज्ञान देने के लिए। तो इस प्रकार नारद मुनि का आगमन हुआ। तो जब नारद मुनि का आगमन हुआ, अर्थात जब हमारे जीवन में गुरु का आगमन होगा, उसके बिना संतुष्टि नहीं हो सकती, ज्ञान नहीं मिल सकता, ये परंपरा है। हम अपने मन से, अपनी इच्छा से न तो भक्ति कर सकते हैं, न ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना तो दूर की बात है। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। तो यहाँ इससे ये दिखलाया जा रहा है, वैसे तो इस अध्याय में शुरुआत में भागवतम का विषय है, सुखदेव गोस्वामी का है, परीक्षित महाराज का है, व्यास देव का है, और फिर व्यास देव की असंतुष्टता का है, लेकिन इसका शीर्षक जो आखिरी दो श्लोक हैं केवल, उसमें बताया जाएगा कि जब वो कर रहे थे तो नारद मुनि वहां पर आए, आखिरी श्लोक में, तो उसको अध्याय का शीर्षक दे दिया गया नारद मुनि का आगमन। पूरे अध्याय में आगमन नहीं है, अंत में आखिरी श्लोक में आगमन है, 33वें श्लोक में। तो जो चीज खाली केवल एक श्लोक में अंत में कही गई उसको शीर्षक बना दिया, और जो सारा अध्याय है उसको शीर्षक ने, क्यों? महत्व दिखलाने के लिए कि गुरु का आगमन हमारे जीवन में सारे आनंद को प्राप्त करा सकता है। गुरु का आगमन हमारे जीवन में ज्ञान प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करता है, भक्ति प्रदान करता है, कृष्ण प्रदान करता है। तो इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता है, और गुरु के आने से ही हम अपने जीवन में आगे भक्ति को बढ़ा सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब नारद मुनि आए, और अब अगले अध्याय में, पांचवें अध्याय में वर्णन होगा कि नारद मुनि और व्यासदेव का क्या संवाद हुआ। बहुत महत्वपूर्ण संवाद है, भक्ति के कई सिद्धांतों को ये प्रकट करने वाला संवाद है। और फिर आगे कथाएं बढ़ेंगी, कैसे कैसे आगे चलकर वर्णन करेंगे, कुंती महारानी का, भीष्म देव का, ये सारे स्कंद में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।